Olmuş şimdi.
Aç. Sangam yug को कौन सा विशेष वरदान मिला हुआ है? संगम युग को विशेष वरदान है एक का पदम गुण, दस वरदान सफलता, एक का पदम गुण प्राप्ति। संगम युग वरदान युग, इस युग को, इस समय को ही कुछ वरदान, अगर युग समाप्त तो वरदान समाप्त, भगवान से मिलन
के बंधन में बांधा है।
वरदान कौन सा मिला? आत्मा के बंधन में बांधने,
भगवान को
अपना बनाने का वरदान है। इसी युग में बनाया जा सकता है और किसी युग में नहीं, और उससे सब कुछ करवाने का, वो सर्वंड बनकर बंधा हुआ है, सर्व प्राप्तियां सहज करने, सहज प्राप्तियों का वरदान,
सर्वश्रेष्ठ समय
नहीं, वरदान कौन सा मिला? इस समय को वरदान कौन सा? पवित्र बनने का वरदान है। कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी पतित हो, इस समय पवित्र बन सकती है। वरदानी बनने का ही वरदान मिला, विश्व कल्याण का, विश्व सेवाधारी बनने का, विश्व परिवर्तक बनने का वरदान हर आत्मा को प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है, सर्व प्राप्तियों की खान, सर्वश्रेष्ठ समान टाइटल उपाधि अभी प्राप्त होती है, ये वरदान मिलेगा। असंभव को संभव करने का वरदान है इस युग को, सहज सफलता का वरदान है इस युग को, निर्विघ्न बनने का वरदान है इस युग को, विजय का वरदान, विजय की सीजन है ये, विजय का मौसम, विजय किसके ऊपर? विकारों के ऊपर। और सफलता किसमें? किसी भी कर्म में, किसी भी सेवा में। तो सफलता, विजय, सर्व प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख, पवित्रता, विश्व कल्याण, संतुष्टता का वरदान है इस युग को, वरदानी बनने का वरदान है इस युग को। और मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा का वरदान है इस युग, अथक बनने का वरदान है, अथक ऑलराउंडर, निरंतर सेवाधारी बनने का वरदान है। भगवान के साथ सर्व संबंध, दो चीज, एक तो भगवान के साथ का वरदान, दूसरा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने का वरदान है इस युग, परमात्मा मिलन मनाने का वरदान है इस युग को, परमात्मा से पढ़ाई पढ़ने का वरदान है इस युग को, श्रेष्ठ अमृत वेला, श्रेष्ठ अनुभव करने का वरदान है इस युग को। तो अमृत वेला, पढ़ाई, वरदान, रोज वरदान लेने का वरदान है इस युग को, देखने का, याद करने का, समाने का और खो जाने का उसकी यादों में, इतने सारे वरदान है इस युग को। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग को कौन सा विशेष वरदान मिला हुआ है? संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का, मेहनत कम और सफलता ज्यादा, यही तो चाहते हैं सर। बाबा ने कहा ना, ये बेहद की अविनाशी लॉटरी है, लॉटरी में ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी होती है, 1 लाख कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और लॉटरी में बस खरीदने की बात है, खरीद लिया और मिल गया,
चलने का नहीं, लिफ्ट में
जाने लिफ्ट में जाने का है, उड़ने का है। आज बाबा ने वरदान में कहा है, तुम मेहनत के पाव से नहीं चलते हो, तुम तो प्यार की गोद में हो, प्यार की गोद में चल रहे हो, आगे बोला चल भी नहीं रहे हो, सदा खुश, अतीन्द्रिय सुख और सर्व शक्तियों में जैसे उड़ रहे हो, यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात मेहनत और थकावट नहीं, यथार्थ पुरुषार्थी वही है जिसे कोई मेहनत नहीं, जिसे कोई थकावट नहीं, सहज सहज है जिसको सब कुछ प्राप्त है। तो सहज प्राप्ति का वरदान, मेहनत कम, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति और सफलता ज्यादा, इसलिए आपके योग का नाम भी है सहज याग, सहज योग, सहज ज्ञान, सहज योग, सहज धारणा, सहज सेवा, सहज अनुभव, सहज पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थ, सब सहज, पर हम उसको मुश्किल बना लेते। बाबा कहते सहज होके बैठो, हम कहते नहीं, हम शीर्षासन करके योग करेंगे, बाबा कहता है आराम से बैठकर योग करो, कहते हम नहीं, हम उल्टा होंगे फिर करेंगे, हठ योग की आदत है, स्थूल नहीं सूक्ष्म की बात है। तो जितनी प्राप्ति कर रहे हो उसके अंतर में मेहनत क्या की? बिना मेहनत के सदाकाल के लिए सर्व प्राप्ति करने के अधिकारी बन गए। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति क्या है? कौन मिला? कौन मिला? भाग्य विधाता। सर्व प्राप्तियों का बीज तुमको मिल गया, वरदान तुम्हारी मुट्ठी में, इसमें वरदाता, वरदाता ही तुमको मिल गया। जो सबको वरदान देने वाले उसी को हमने पकड़ लिया। बाप मिला, सब कुछ मिला। तो बाप सहज मिला या मुश्किल मिला? अभी बाप भी कैसे मिला, सहज मिला या बहुत मुश्किल से मिला? किसने किसको ढूंढा? उसने हमको ढूंढा कि हमने उसको ढूंढा? हम गए थे उसको, हम तो ढूंढ रहे थे उसको, द्वापर से मिला क्या? नहीं, पर ढूंढा किसने आखिर में? हम दोनों तो चलो ढूंढ रहे थे, घर बैठे मिला ना। कोई खर्चा किया? खर्चा करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ी,
मिला तो जो पाया उन्होंने खर्चा किया।
हाँ वही ना। तो आप लोगों ने आधा कल्प मेहनत की, लेकिन मेहनत से बाप नहीं मिला। मेहनत तो बहुत की, पर मिला क्या उससे? बहुत ढूंढा तुमने, पर मिला क्या? हम ये सोच रहे थे हम उसको ढूंढ रहे थे, पर वो एक्चुअली हमको ढूंढ रहा था। तो बाप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिना परिचय ढूंढ ना सके, और बाप ने सहज ही ढूंढ लिया। चाहे कितने भी दूर चले गए हो, लेकिन बाप ने ढूंढ लिया। कहाँ कौन कौन किस किस गांव से था पता नहीं, वहां वहां से जाकर उसने ढूंढा। सारे जासूस उसने अपने फैला के रखे कि जहां जहां मेरे है बच्चे, जाओ ढूंढो उनको लेके आओ। और वो ऐसे जासूस से पक्के पावरफुल कि कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। कोई तो ऐसी जगह था जहां पर हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, कुछ नहीं, कोई साधन ही नहीं था यहां तक आने का, पहुंचने का। वो तो बस किसी गांव में पता नहीं कहां जन्म लिया था, उसने भी ढूंढ कर यहां तक पहुंच गया। तो किसने किसको ढूंढा? उसके लिए ढूंढ पाना असंभव था। ये बाबा ने ही ढूंढा है सबको। जीसस क्राइस्ट कहता है बाइबल में, आई हैव नॉट, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढा है। I picked you up from this world. मैंने तुमको चुना इस दुनिया से, क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने थे, तुम मेरे लिए आए थे। वो अपने 12 शिष्यों को ऐसे ही ढूंढता है, भीड़ में घुस जाता है। हाँ तुम आ जाओ, तुम नहीं, तुम आ जाओ। कोई एक सामने से आके कहते मैं, तो बोलते तुम नहीं, उसके बाजू वाला तू आ जा। तो जैसे वो दिखाते हैं, एक धर्म स्थापक भी अपने शिष्यों को खुद चुनता है। तो यहाँ तो स्वयं भगवान आया, तो उसने तो एक एक को चुना है, एक एक को चुना, रत्नों को, हीरो को, मोतियों को। कहां कहां पड़े थे पता नहीं, कोयले की खान वहां से निकाला एक एक को।
सभा से बुलाते थे,
तो संगम युग का विशेष वरदान ही है सहज प्राप्ति का। तो सहजता हर चीज में, सहज अमृत वेला योग में भी सहज, मुरली में ऐसे नहीं कि वो मुरली की पॉइंट्स में ही याद करने में ही बहुत बड़ा एक संघर्ष चालू है। आज बाबा ने कहा है लिखो, पॉइंट्स नोट करो सारे, याद नहीं रख सकते तुम, नोट करो
डायरी में,
नोट करो। पर ऐसा भी नहीं कि डायरी पड़ी रहे, नोट तो कर दिया पर वो पड़ी है, बाद में खोल के देखा ही नहीं। तो चाहे वो मुरली सुनना, याद करना, समाना, धारण करना, उसमें भी सहज, योग में सहज, ज्ञान में सहज, हर चीज में सहज, सहज प्राप्ति। याद करना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? तो जो सहज होता है वह स्वतः ही निरंतर होता है। अगर मुश्किल है तो वो लंबा समय तक नहीं चलेगा, बड़े ही खेचातान करके कर रहे, अपने अंदर संघर्ष है। बाबा ने कहा दुनिया को नहीं देखो, हम देख रहे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करो, पर हम कर रहे। ये जो संघर्ष है ये लंबा समय गिरा देगा आत्मा को फिर। तो निरंतर सहयोगी होना, जब बाप साथ है और बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है उसका साथ छोड़ा जाता है क्या? तो साथ क्यों छोड़ते हो? सदा साथ रहने से माया जीत भी सहज होंगे। वायदा क्या करते हो कि कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको नहीं भूलेंगे, तो फिर क्यों छोड़ते हो? तो जो वायदा किया है उसको सदा स्मृति में रखो। क्योंकि ड्रामा अनुसार समय भी वरदान ही मिला है, तो समय भी सहयोगी है। बाप दादा आते ही है सब सहज करने। इसलिए आते हैं बाप दादा सब कुछ सहज करने। तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा एक संघर्ष ना, संघर्ष की स्थिति ना, एक द्वंद ना हो, निर्द्वंद स्थिति, सहज स्थिति। तो जो भी कदम उठाते हो हर कदम में सहज का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन है। हर चीज सहज अनुभव हो, पर प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करना है, अभ्यास नहीं करना है, परंतु जैसा उसने कहा उस रीति से प्रैक्टिस करना है, बिना उसमें मनमत या परमत मिक्स किए, तो हर चीज सहज हो जाएगी। क्योंकि बाप सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर कर देते हैं, तो जहां प्राप्तियों का भंडारा भरपूर है वहां कोई बात मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल लगता है फिर। जैसे दिखाया है कि तीन मजदूर श्रमिक कामगार लेबर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रहे हैं। एक राहगीर उनसे पूछता है, पहले श्रमिक से, क्या कर रहे हो? वो कहता है पत्थर तोड़ रहा हूं। उसकी आंखों में जैसे दुख है, बोझ है उसके स्वर में, क्या कर रहा हूं? और वो सही कह रहा है, क्योंकि पत्थर ही तोड़ रहा है, कड़ी धूप है, पत्थर तोड़ रहा है, पर उसकी आंखों में एक दुख है। उसने बोला और फिर उदास मन से पत्थर तोड़ने लगा। वो ये भी सहज है कि पत्थर तोड़ना कोई आनंद का काम तो है नहीं। पत्थर तोड़ना, वो भी कठोर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर तोड़ना कोई एकदम आनंद या खुशी की बात तो है नहीं। तो एक रीति से वो सत्य ही कह रहा है कि पत्थर तोड़ रहा हूं, पर आंखों में दुख, बोझ, उदास मन, कहा और फिर पत्थर तोड़ने लगी। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, आजीविका कमा रहा हूं, लाइवलीहुड, अर्निंग, और वो भी सही है, पर उसके स्वर में दुख नहीं था, पर आनंद भी नहीं था। अभी आजीविका कमाने में आनंद की क्या बात है? वो तो करना ही है, वो तो जरूरी है, वो नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे और परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तीसरे व्यक्ति से पूछा, वो तो पहले ही नाच रहा था, उसको रोक के पूछना पड़ा, क्या कर रहे हो? तो वो तो कहता है, भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं, सृजन का कार्य कर रहा है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे हृदय में संगीत है, गीत है, खुशी ही खुशी है। कर्म तीनों सेम है, पत्थर तोड़ने का, पर पहले के लिए वो पत्थर तोड़ना था, दूसरे के लिए उसके अर्निंग, उसकी आजीविका का, लाइवलीहुड का साधन था, और तीसरा क्या कर रहा है? मंदिर, मंदिर बना रहा है। किसके लिए मंदिर बना रहा है? भगवान के लिए मंदिर बना रहा है, और खुशी से नाच रहा है, उसका दिल जैसे गा रहा है। तो ब्राह्मणों की भी ऐसी स्थिति है, कोई किसी ग्रुप को समझा रहा है, क्या कर रहे हो? पहला श्रमिक कहता है पत्थर तोड़ रहा हूं, यहाँ क्या कहता है? सेवा कर रहा हूं, कोई था ही नहीं दूसरा समझाने वाला, और ये गुरु को आ गया, समझाना तो पड़ेगा ना। हाँ आ गए, क्या करें, अभी भेज भी नहीं सकते, आ गए हैं, और टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो मैं तो योग करने जा रहा था, तो ये बीच में आ गए, तो समझाना तो पड़ेगा ना। तो वो जो कह रहा है कोई गलत तो कह ही नहीं रहा है, बराबर कह रहा है। दूसरे को पूछा, क्या कर रहे हो? तो कहता है कि प्रजा बना रहा हूं, मतलब आजीविका कमा रहा हूं ना, एक रीति से तो प्रजा बना रहा है ना। तीसरे को पूछा, क्या कर रहे हो? तीसरा क्या कर रहा है? नाच रहा है वो तो, आज का मुरली के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है, बाप का पैगाम सबको देना है, किसी भी हालत में कोई भी युक्ति रच कर सबको बाप का परिचय देना है, आज की मुरली का महावाक्य। तो वो क्या कह रहा है? खुशी में नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय दे रहा है, सबका मिलन करा रहा है परमात्मा से, ये खुशी है उसको। कर्म एक ही है, परंतु जो तीसरा है उसके लिए सहज है, जो पहला है वो पत्थर तोड़ रहा है, वहां मुश्किल का अनुभव है, वो भगवान से कहता है, क्या तुमने मुझे ये काम दिया? कितना दुख है जीवन में, काम दिया तो देखो, दूसरे लोग देखो कैसे आराम से बैठे हुए, एसी कमरे में बैठे हुए हैं, और एक जगह बैठ के मस्त ऑर्डर देते रहते हैं, और हमको ये ग्रुप समझाओ, वो समझाओ, ये करो, इधर जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, दिन में दो बार नीचे जाओ, ऊपर आओ, ये क्या सेवा है हमारी? पत्थर तोड़ना, दूसरा तो खाली प्रजा बना रहे, प्रजा भी किसकी? अपना भाग्य बना रहे, उनका भाग्य बने ना वो छोड़ो, कोई मिला तो पकड़ो और सुना दो ज्ञान उसको पूरा, चाहे वो सब जगह घूम के आया हो, पर हमको उसको सुनाना ही है, उसका क्या होगा वो ज्ञान में आए ना आए उस वो कम महत्व का, ज्यादा महत्व का क्या है हम उसको सुनाए। तो आजीविका कमाई कर रहा है और हमें बनना है तीसरा जो कि सृजन का कार्य करे। सृजन का कार्य सबसे श्रेष्ठ कार्य है, जो सृजन का कार्य निर्माण का कार्य है उसी में आनंद है। तो हम जो भी कार्य करें वो सृजनात्मक कार्य हो, रचनात्मक कार्य हो, क्रिएटिव विधायक। तो बाबा कहते हैं तो जो भी कदम उठाते हो हर कदम में सहज का अनुभव करना, खींचातान नहीं, संघर्ष नहीं, वो क्या कहते हैं उसको रस्सी चटाबेटी। बाबा कहते ना माया के साथ तुम्हारी चटाबेटी है, टग ऑफ वॉर, वो नहीं हो। क्योंकि बाप सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर करते हैं, तो जहां सर्व प्राप्तियों का भंडारा भरपूर है वहां कोई बात मुश्किल नहीं है। सर्व शक्तियों का भंडारा भरपूर है, जो नॉलेजफुल है उसके सर्व खजानों खजानों से भंडारे फुल है। अगर कोई कमी है चाहे शक्तियों में चाहे गुणों में, किसी भी खजाने में कमी है तो नॉलेज की कमी। तो बाप समान बनना है तो चेक करो कि किस खजाने की कमी है और उसको भरते जाओ, देखो किस खजाने की कमी है उसको भरते जाओ। ये होली पर मुरली है, सभी ने होली मनाई कि अभी मनानी है। होली मनाना अर्थात होली बनना, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही होली अर्थात पवित्र। पवित्रता की विशेषता से ही अभी भी महान हो और सदा ही महान रहेंगे। प्यूरिटी सहज लगती है या मुश्किल लगती है? एक है ब्रह्मचर्य तो धारण कर लिया, परंतु संघर्ष है अंदर, आकर्षण है बहुत सारे, क्योंकि समझा नहीं है उसको क्या है, बस थोप दिया अपने ऊपर। तो पवित्रता धारण कर लिए या पवित्रता धारण करने में अभी टाइम चाहिए? सब विकार चले गए या थोड़ा अंश रह गया है? पांडवों को कभी क्रोध आता है? माताओं को मोह आता है? संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्या? संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी दोनों। ब्रह्मचारी भी ब्रह्म में ब्रह्मी स्थिति में रहने वाले और ब्रह्माचारी भी ब्रह्मा ने जो आचरण किया उस आचरण में चलने वाले, दोनों चीजें। तो ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। दूसरा स्वप्न संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात अपवित्रता का अंश भी नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात अपवित्रता की टचिंग भी नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात साधारण व्यर्थ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का आधार प्योरिटी। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पवित्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनैलिटी। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाई। सेवा में संघर्ष है, सेवा में सफलता कम है तो समझ लेना प्योरिटी कम है। जहां बहुत संघर्ष करना पड़ता है लोगों को ज्ञान में लाने के लिए, समझ लेना सेंटर पे जो रहने वाले हैं उनकी प्योरिटी थोड़ी कम है, प्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो सहज सफलता होगी, सहज सेवाएं होगी। कोई भी पर्सनैलिटी का प्रभाव, कोई भी पड़ता है ना पर्सनैलिटी का प्रभाव, तो सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है प्योरिटी पवित्रता की। अगर एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे, थोड़ा सा है तो सब उसके साथ आ जाएंगे एक एक करके। जैसे आप दूसरे को कहते हो ना, क्या कहते हो पवित्रता के लिए दूसरों को? जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। पवित्रता जननी है, माँ है, और उसके जो बच्चे है वो माँ की गोद में खेलेंगे। सुख और शांति माँ की गोद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध, ऐसे अपवित्रता का
दुख अशांति,
दुख और अशांति से संबंध है। और किससे संबंध है? रोग शोक पीड़ा दर्द मोह सारे विकार। ऐसे अपवित्रता का भी पांच विकारों से गहरा संबंध है। जैसे पवित्रता का गहरा संबंध सुख और शांति से है, संसार की आत्मा है, दुखी है, अशांत है, पर यह मानने को तैयार नहीं है कि वो अपवित्र, उन्हें कारण ही पता नहीं है उसका, वो ढूंढ रहे दुख का क्या कारण है। जब उनको ये ज्ञात हो जाएगा कि दुख का कारण ही अपवित्रता है, तो कहीं जाके पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए आज बोला, कल बोला था ना बाबा ने, सबने दुर्गति को पाया है, सदगति करने केवल बाप आते, सभी आत्माओं ने दुर्गति को पाया है। पहले तो ये समझ में आएगी हमारी दुर्गति हो गई, तब कहीं संकल्प हो कि अभी सदगति करें, कोई ये मानने को ही तैयार नहीं कि हमारी दुर्गति हो गई। इसके लिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। कोई भी विकार का, पहले तो ये माने कि ये विकार है, लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि ये विकार है, वो तो उसको पूंजी समझते हैं, धन समझते हैं। मोह को कोई विकार समझता है कि संसार में? माँ का अपने बच्चों से बहुत प्यार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग इसको अच्छा ही कहते हैं, कोई इसको बुरा कहता है कि? मोह वहां कहते भी नहीं है, वहां तो मोह शुद्ध शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है, मोह मोह है। तो मोह को तो अच्छा ही मानते हैं लोग, काम को तो लोग अच्छा ही मानते हैं, क्रोध तो जरूरी है संसार के लिए। बाबा कह रहे ये विकार है, इनको तुम्हें छोड़ना है। बाबा जो संसार के अब तक के सिद्धांत है, अब तक की जो परंपरा है, अब तक की जो रीति रिवाज है, उन पर जैसे चोट कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, एकदम विरोधाभास है बाबा की शिक्षाओं में और संसार में जो मान्यता है उनमें। तो ऐसा ही लक्ष्य है ना, या थोड़ा थोड़ा रह गया हो तो कोई बात नहीं, तो सदा लक्ष्य को सामने रख, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करते होते चलो। जब सभी कहते हो नंबर वन आना है, कोई टू नंबर नहीं कहते, तो किस आधार से नंबर वन बने? आधार क्या है? पवित्रता के आधार से। सेवाओं का आधार नहीं है, पवित्रता का आधार। तो नंबर वन प्योर बनो, क्या बनो? नंबर वन प्योर, पवित्र, शुद्ध। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को विदाई के समय होली की मुबारक दी, चारों ओर के होली हंसों को होली के उत्सव की उमंग उत्साह भरी याद प्यार। सभी बच्चों के रूहानी होली मनाने की खुशी के उमंग उत्साह की संकल्पों द्वारा, पत्रों द्वारा, कार्ड द्वारा, खिलौनों द्वारा याद प्यार मिली। रूहानी बच्चों की संगम युग पर सदा होली रहने की होली है, फिर भी संगम है ही कौन सा युग? वरदानी युग। बाबा ने कहा सुहेज मनाने का युग, सुहेज अर्थात मौज। संगम युग है सुहेज मनाने का युग, संगम युग है वरदानी युग, संगम युग है विजय का युग, संगम युग है धर्माव युग, संगम युग है लीप युग, संगम युग है पुरुषोत्तम युग, संगम युग है सहज प्राप्ति करने का युग, संगम युग है प्रभु मिलन का गुप्त युग, गुप्त युग है। तो ये युग कौन सा है? मौज मनाने का युग। इसलिए विशेष सदा बाप के संग रहने की, सदा संपूर्ण होली बनने की और सदा बीती को बीती करने वाली होली की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो क्या सुना? संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बाबा कह रहे हैं संगम युग को कौन से विशेष वरदान मिले हैं, ये एक इसकी लिस्ट बना के रखो। संगम युग को प्राप्त वरदान कम से कम 10 हमारी बुद्धि में निरंतर रहे, उसको लिख के रखो या फिर बुद्धि में रखो, डायरी में रखो, पर डायरी में नहीं तो वो भी पता चाहिए कौन कौन से संगम युग को प्राप्त। हर दिन हम जो पढ़ते हैं उसमें से एक होमवर्क उठाना है, ताकि जिससे हमारी बुद्धि चलना चालू करे, नहीं तो वो सुन हो गई, वही वही बातें सुन सुन कर, सुन सुन कर, सुन सुन कर, कुछ तो उसको नया धक्का चाहिए एक, तो उसके चालू होता है वो काम करना। मशीन ऐसी है कि ऐसे 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 करते करते रुक जाती है, धक्का लगाओ तो चालू होती है फिर थोड़ी देर के लिए, 12 घंटे या 24 घंटे, फिर और ढीली पड़ती है, फिर धक्का लगाना पड़ता है उसको, चिंतन का धक्का चाहिए उसको एक अच्छे पावरफुल। तो संगम युग में कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए इसके ऊपर एक चिंतन का विषय है ये, किसने किसको ढूंढा, बाप ने हमको ढूंढा या हमने उसको ढूंढा, ये भी चिंतन कर सकते हैं। हमने उसको ढूंढने के लिए क्या क्या किया, नहीं क्या क्या किया हमने, बहुत कुछ किया उसको ढूंढने के लिए। मंदिर में गए, दान पेटी में दान डाला, मस्जिद में गए, उपवास किए, तीर्थ यात्राएं की, गुरुओं के शरण में गए, व्रत रखे, नियम काशी कलवट खाए, वो घुटनों के बल मंदिर तक गए, लेट लेट के ऐसे उल्टा उल्टा करके उसको उसके मंदिर में गए, इतने दूर दूर तक तीर्थ यात्राएं की, यज्ञ किए, तपस्याएं की, भगवान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, उसके लिए जप किया, कीर्तन किया, माला फेरी बहुत किया, उसको पुकारा, चिल्लाया, यहाँ वहां ढूंढा, और कहीं था ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ था। अलग अलग धर्मों में गए, अलग अलग धर्म गुरुओं के शरण में गए, कभी बौद्ध धर्म में गए, कभी सिख में गए, कभी क्रिश्चियनिटी में गए, कभी हिंदुओं में तो पूछो मत, कभी कृष्ण की शरण में, कभी राम की शरण में, कभी गणेश की शरण में, कभी देवियों की शरण में, जिसने जहां कहा वहां वहां गए, सब कुछ किया उसको पाने के लिए, फिर भी वो मिला नहीं, पता नहीं कहां रहता था। तो उसने हमको ढूंढा, हम उसको ढूंढने में असफल रहे, मानना पड़ेगा, हम बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, सब कुछ लगा दिया दाव पर, आखिर में काशी कलवट खाने को भी तैयार हो गए कि अगर तुम प्रकट नहीं होंगे तो उसने थोड़े बहुत साक्षात्कार करा दिया, हनुमान दिख गया सामने तो हम खुश हो गए, गणेश दिख गया तो हम खुश हो गए, परंतु वो नहीं मिला, उसने अपने आप को छुपा के रखा ऊपर। तो किसने किसको ढूंढा? फिर आगे बाबा ने क्या कहा कि क्यों छोड़ते हो अगर सहज है तो, हर कदम सहज उठाना, यही ब्राह्मण जीवन। देखो कहां कहां मेहनत लग रही है, मेहनत लग रही है अर्थात अज्ञान है, कहीं ना कहीं अंधकार है, उस अज्ञान को मिटाओ। अभी भी किसी में बहुत मोह है, वो मोह में हम छूटना चाहते हैं, पर बहुत मेहनत लग रही है, जरूर अज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान जहां है वहां पर, जहां संपूर्ण प्रकाश है वहां अंधकार हो नहीं सकता। जहां पर भी हमारा कुछ प्रॉब्लम है वहां पर जरूर कुछ ना कुछ हमारे पास अज्ञान है। अभी भी हमने ज्ञान की किसी एक मुख्य पॉइंट को नहीं समझा है कि उसके कारण ही अज्ञान है। वो पॉइंट अगर हमारी बुद्धि में आ जाए, पकड़ में, तो शायद ये कमजोरी नहीं रहेगी। ये संस्कार जो 10 साल से चल रहा है और छूट नहीं रहा है, जरूर उसको कुछ तो एक बात है कि उसकी कोई एक पहलू है, कोई एक डायमेंशन है, कोई एक आयाम है जो अभी तक हमारी बुद्धि से वो दूर है, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, जिसको हम स्पर्श नहीं कर पा रहे। क्या है वो? तो फर्स्ट स्टेप ही ज्ञान को बढ़ाना है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, स्वतः ही सारा अंधकार विलीन होते जाएगा, तो तभी सहजता आएगी। फिर बाबा ने कहा होली के लिए, क्या कहा? संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता अर्थात विकारों का अंश भी ना हो। और सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी ये है, पर्सनैलिटी प्यूरिटी ज्यादा तो पर्सनैलिटी ज्यादा, प्यूरिटी कम तो पर्सनैलिटी कम। संसार में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेस है, बोलना कैसा, चलना कैसा, कपड़े क्या पहनना, रॉयल्टी जो होती, कल भी कहा था ना बाबा, घुसने की कई कई आत्माओं में बहुत रॉयल्टी होती, बड़ी अच्छी तरह से फजीलत से बात करते, और कुछ होते उनको तो बस 1 करोड़ भी 1 महीने में उड़ा देते हैं बाप के। तो वैसे हर प्रकार के लोग हैं यहाँ संसार। तो हमारी है पर्सनैलिटी कौन सी? हमारी पर्सनैलिटी ही प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट ही वो है, उसमें हमको संपूर्ण बनना है, उसी में हमको डिग्री मिलानी है, मास्टरी करनी है, स्पेशलाइजेशन उसमें ही करना है, बाकी सब छोड़ दो, यही हमको मास्टरी करनी है। फिर बाबा ने कहा जैसे पवित्रता का संबंध सुख शांति से, अपवित्रता का संबंध 5 विकारों से, और वो भी कैसा संबंध है? गहरा, बहुत ही घना संबंध है। तो लक्ष्य को सामने रख, लक्ष्य प्रमाण, लक्षण धारण करते उड़ते चलो। तो नंबर 1 में आना है, नंबर 2 में नहीं आना है। किस आधार से नंबर 1 बनेंगे? पवित्रता के आधार से, संपूर्ण पवित्रता के आधार से। तो ये मुरली यहाँ पूरी हुई, इसमें 5 ग्रुप थे, और ये सब बहुत सारी बड़ी बड़ी मुरली थी, होली की मुरली थी। कल से नई मुरली चालू करेंगे, 26 तारीख की, 26 मार्च की, 93 की। ओम शांति।